लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवंस एवं छठ नागपुर की कलीसिया के आरंभिक इतिहास पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि बारहवें के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी वे विश्वास में दृढ़ बने हुए थे। वे फादर लेवंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम सुनेंगे कि फादर लेबन्स बारहवें की यात्रा पर निकल चुके हैं, तो आइए आगे सुनते हैं। फादर लेबन्स दिसंबर के पहले सप्ताह में रांची से बारहवें के लिए निकले। वे सबसे पहले नवाटोली गए, जहां वे फादर कार्डोन और फादर डेहोन से मिले। वे अपने साथ दो मिशनरियों को लेना चाहते थे, जो उन्हें काम करते हुए देख सकें एवं संभावित आरोपों के मामले में उनकी साक्षी बन सकें। साथ ही साथ जो काम करना है उसमें भी वे उनको सहयोग दे सकें। फादर कार्डोन घर ही में थे, जबकि फादर डेहोन कांसीर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। उन्हें पत्र भेजकर यात्रा में साथ देने का निमंत्रण दिया गया। उस रात फादर लेबन्स नवाटोली में ही रुक गए। 8 दिसंबर को बड़े सवेरे फादर लेबन्स और फादर कार्डोन अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर बारहवें के लिए रवाना हुए। वे बड़ी आशा एवं खुशी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़े। दिसंबर का सुहाना मौसम, जिसमें न गर्मी थी और न बारिश, इस कारण लोगों से मुलाकात करने हेतु यह एक उपयुक्त समय था। उन्होंने अपने परिवार वालों को अपना अनुभव बतलाते हुए लिखा, बिल्कुल सही समय है एक गांव से दूसरे गांव और एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, लोगों से मुलाकात करने और बच्चों को बपतिस्मा देने, पाप स्वीकार सुनने, मार्गदर्शन देने और विवाह संस्कार देने के लिए। दोनों मिशनरी सीधे बिंदोरा गए। वे 8 दिसंबर को ही बिंदोरा पहुंच गए। कुछ दिनों बाद फादर डेहोन भी बिंदोरा पहुंचे। बारहवें के लोगों ने फादर लेबन्स एवं उनके दो साथी मिशनरियों का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। एक साल पहले भी लोगों ने फादर लेबन्स का उसी तरह स्वागत किया था। फादर डेहोन अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अब तक जितने गांवों का दौरा किया था, उनमें से किसी में इस तरह उत्साह नहीं देखा था। गांव वालों ने गाजा बाजा एवं शोभा यात्रा के साथ उनका स्वागत किया। फादर लेबन्स के साथ गए दोनों मिशनरियों ने लोगों में सीखने की तीव्र उत्सुकता को देखा। वे धर्म शिक्षा के लिए सहर्ष जमा होते थे और फादर लेबन्स के व्यक्तित्व एवं शब्दों पर पूरा भरोसा रखते थे। इस तरह फादर लेबन्स ने पूरे बारहवें का दौरा करने की योजना बनाई। फादर कार्डोन पश्चिम के गांव और फादर डेहोन दाहिनी ओर के गांव, जबकि फादर लेबन्स बीच के गांव का दौरा करने लगे। वे शाम को एक साथ मिलते थे और एक निश्चित स्थान पर खाते पीते एवं सोते थे। इस तरह उन्होंने पूरे बारहवें का दौरा पूरा किया। एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए वे लोगों की स्थिति पर गौर करते थे, उन्हें धर्म शिक्षा एवं बपतिस्मा देते थे, और जब तीनों मिशनरी एक साथ मिलते थे तो वे अपना अनुभव एक दूसरे को साझा करते थे। लोगों से मिलकर फादर लेबन्स को पछतावा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी पहली यात्रा के दौरान उनके आग्रह पर कुछ वयस्कों को बपतिस्मा दे दिया था। बारहवें के उरा अपने विश्वास में वफादार बने हुए थे। मिशनरियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किस तरह गैर ख्रिस्तीय परंपरा ने ख्रिस्तीय अभ्यास को रास्ता प्रदान किया था। उनके बीच रात्रि नृत्य बंद हो चुके थे, यद्यपि अतीत में वे उसे बहुत पसंद करते थे। उसके स्थान पर सभी ओर ख्रिस्ते भजन गूंज रहे थे। भोजन के पहले और बाद में वे क्रूस का चिन्ह बनाते थे। शादी विवाह में भी वे कोई मूर्ति पूजक उत्सव नहीं अपनाते थे, बल्कि पुरोहितों का अनुसरण करने की कोशिश करते थे, जैसा कि उन्होंने रांची में देखा था। पुरोहित के अभाव में वे गांव के मुखिया के सामने शादी की प्रतिज्ञा दोहराते थे। बारहवें मिशन में तीनों मिशनरियों को एक चीज बहुत अधिक प्रभावित किया और वह थी प्रार्थना एवं विश्वास की मूल सच्चाई, जिसको वे अच्छी तरह सीख गए थे। दो सप्ताह तक दौरा करने के बाद तीनों मिशनरी उत्तरी बारहवें क्षेत्र पहुंचे, जिसको छिछाड़ी कहा जाता था। 23 दिसंबर को वे कुरुद पहुंचे, जो छिछाड़ी का पहला गांव है। वे विस्मित एवं आनंदित थे। वहां कभी कोई फादर नहीं पहुंचा था, किंतु जैसे ही मिशनरी वहां पहुंचे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी एकत्रित हो गए और उन प्रार्थनाओं एवं विश्वास की मूल बातों को दोहराने लगे जिनको उन्होंने कैथलिकों से सीखा था। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छटनागपुर में कैथलिक कलीसिया की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक अपने पराये। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, घर परिवार की नींव को यदि कोई मजबूत करता है तो वो है रिश्ते। यदि रिश्तों में प्यार हो, विश्वास हो, तो घर अपने आप ही मंदिर बन जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी है कि वो एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। कई पत्नियों की आदत होती है कि वे शादी के बाद अपने ससुराल को अपने मायके की तरह रखना चाहती है। सभी चीजों को अपने मायके से तुलना करती है और ससुराल उनकी प्राथमिकता नहीं होती बल्कि मायका होता है। मायके को अपना और पति के घर को पराया मानती है, तो ऐसे में केवल सास बहू का ही नहीं बल्कि पति पत्नी का भी झगड़ा हो सकता है। इसलिए शादी के बाद पत्नियों को अपने मायके से प्यार रखना चाहिए, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उनका ससुराल ही होना चाहिए। पत्नी मायके और ससुराल दोनों परिवारों को प्रेम के साथ जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। पत्नी अपने ससुराल के सदस्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करे तो पति को चाहिए कि वे उसे समझाएं और गलतियों को सुधारने का मौका दें। प्यार में इतनी ताकत लाएं कि सामने वाला अपनी कमियों को आपके कहे बिना ही सुधार ले। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में दंपतियों का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अपने पराए।
हाँ हाँ, नमस्कार मयंक भैया, कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? यहाँ पर हम लोग भी ठीक हैं। अच्छा, हाँ तो कब आ रहे हो? अरे तुम उसकी फिक्र ना करो। अरे मेरी तबीयत तो सर्द गर्म सी चलती रहती है। हाँ, अरे वो तुम्हारे भैया कर लेंगे सब। अरे कैसी बातें करते हो, यह घर भी तो तुम्हारा है। ठीक है ठीक, नमस्कार। लो अब ये इनके एक मयंक लाड साहब भाई आ रहे हैं। टपकने से पहले आज ही फोन कर दिया, अब दो दिन अपने ऑफिस के काम से यहाँ रहेंगे, तो उनकी खातिरदारी में लगे रहो।
अरे क्या बड़बड़ा रही हो बिना वजह ही, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा।
अगर तुम गृहस्थी का काम चलाते ना तो पता चल जाता तुम्हें भी, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं।
तो
सिर तो मुझे ही खपाना पड़ता है ना कि तुम्हारे लंच बॉक्स के लिए क्या बनाऊं।
अरे तो मैं कौन सा कोई फरमाइश पूरी करने का कह रहा हूँ।
और अगर मैं कुछ भी बना कर रख दूंगी तो शाम को घर में घुसते ही मुझे लंच रामायण सुनना पड़ेगा।
ये लो, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं रोज ही तुमसे लंच की शिकायत करता हूँ।
अब रोज करो या कभी कभी, शिकायत तो करते हो ना, चुपचाप तो खाना नहीं खाते। अब एक काम करना तुम।
क्या?
शाम को ऑफिस से लौटते समय खुद ही अपनी पसंद की सब्जी लेते आना।
लो अब ऑफिस से थके हारे निकलो और सब्जी मार्केट की खाक छानते फिरो। ठीक है भाई, अब ये भी कर लेंगे।
लंच अगर अपनी पसंद का चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई कि तुम्हारा भाई मयंक परसों आ रहा है।
मयंक आ रहा है? चलो अच्छा है, इसी बहाने दो चार दिन वो भी हमारे साथ रह लेगा।
लेकिन उसका सारा तुम्हें ही देखना पड़ेगा।
क्यों, तुम्हें क्या हो रहा है?
सुबह से बदन बहुत दर्द कर रहा है, सिर भी भारी भारी सा हो रहा है।
मैं समझ गया तुम्हें क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है?
तुम्हें मेहमान एरिया हो रहा है, क्योंकि जब भी मेरे घर से कोई आता है तो तुम्हें यही होता है।
ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
मैं बकवास नहीं, सही बात कह रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम गोली वोली लेके आराम ही करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ।
लौटते समय सब्जियाँ लेते आना।
अब तुमने कह दिया है तो लाना ही पड़ेगा। आता हूँ फिर। हाँ, तुम्हारी तबीयत के क्या हालचाल है भाई पूनम?
कमर बहुत दर्द कर रही है और गला भी।
कमर तो चलो मैं दबा दूंगा, लेकिन गला, चलो वह भी दबा देता हूँ, बार बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा।
तुमको तो बस मजाक सूझता है हर दम।
जाओ जरा जाकर देखो तो कहीं मयंक तो नहीं।
क्या राजेश, क्या तुम्हें पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है?
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चलो मैं ही देख आता हूँ। अरे प्रतीक, तुम?
नमस्ते जीजा जी।
नमस्ते, आओ भाई, तुम फोन कर देते तो मैं स्टेशन आ जाता लेने।
कौन है, किससे बातें कर रहे हो?
देखो तो कौन आया है पूनम।
मुझे पता है तुम्हारा भाई मयंक आया है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, दोनों भाई बनाओ और खाओ।
कैसी हो दीदी?
अरे प्रतीक, तू अचानक कैसे आया भाई तू?
अरे दीदी, बैंक के एग्जाम देने आया हूँ।
वाह, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तो सोची थी कि मयंक आया है।
मयंक ने तो आज मुझे सुबह ऑफिस में ही फोन कर दिया था कि अब वो अगले महीने आएगा।
और घर पर सब कैसे हैं प्रतीक?
सब अच्छे हैं दीदी, आपको याद करते हैं।
हाँ भाई प्रतीक, तुम्हारा एग्जाम कितने दिन चलेंगे?
एग्जाम तो एक ही दिन है जीजा जी।
तो एक काम करना, फिर तुम्हारे एग्जाम के बाद 2-3 दिन रुक कर जाना और खूब घूम फिरना यहाँ पर, है ना?
देखते हैं, पहले एग्जाम तो हो जाए।
अब तुम्हारी बहन तो बीमार है प्रतीक, वरना यह भी तुम्हारे साथ घूमने फिरने जाती और तुम्हें घुमा फिरा लाती।
हो सकता है कल परसों में मेरी तबीयत ठीक हो जाए।
अरे वो तो ठीक होना ही है।
अगर दीदी ठीक हो जाएगी तो देखेंगे फिर। दीदी, आपको पता है कि जीजा जी कितने अच्छे हैं?
अरे वो तो अपनी इमेज हर किसी के सामने यूं ही बनाते रहते हैं।
आप भी क्या बात कर रही हैं दीदी, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा पता है? आपकी जगह उन्होंने किचन संभाला और आपके साथ साथ हम दोनों के लिए भी खाना पकाते रहे।
तो क्या हुआ?
अरे दीदी सोचो जरा, सोचो। इसके साथ साथ वे अपने ऑफिस की ड्यूटी भी करते रहे, लेकिन बिना खिसियाए और बिना चिड़चिड़ाए। वाकई दीदी, ऐसा पति नसीब वालों को ही मिलता है और आप सचमुच नसीब वाली हैं।
अरे वाह, 2 ही दिन में जीजा की बड़ी तारीफ हो रही है।
फूल को फूल ही तो कहेंगे ना दीदी, कांटा तो नहीं कहेंगे।
क्या बात है, भाई बहन में बड़े फूल कांटे की बहस चल रही है।
हाँ जीजा जी, मैं दीदी को बता रहा था कि फूल को फूल और कांटे को कांटा ही तो कहा जाएगा ना।
तुम्हारी दीदी जानती सब कुछ है प्रतीक, लेकिन फिर भी ना समझ होने की एक्टिंग करती है। जैसे इसकी तबीयत को ही ले लो, ये बीमार नहीं है लेकिन बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी मेरे भाई के आने की खबर सुनकर, लेकिन उसके बदले तुम आ गए।
क्यों दीदी, आपने ऐसा क्यों किया?
जब भी मेरे घर परिवार से कोई मेरे यहाँ आता है तो ये ऐसा ही करती है, लेकिन इसके घर परिवार से कोई आ जाए तो ये बहुत खुश हो जाती है।
दीदी, आप दोनों परिवारों में अपने पराये का भेद क्यों करती हैं? अब तो दोनों ही परिवार आपके ही हैं।
तुम बिल्कुल सही कहते हो प्रतीक, कोई भी बहू अपने मायके और अपने ससुराल दोनों परिवारों को जोड़ने के लिए पुल का काम करती है, ताकि दोनों परिवार दो दिल एक धड़कन की तरह रह सके।
मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दो राजेश।
पूनम, जब मैं तुम्हारे परिवार को अपना समझ सकता हूँ तो तुम क्यों मेरे परिवार को गैर समझती रही?
मुझे अपना व्यवहार पर अफसोस है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
तो फिर ठीक है प्रतीक, तुम जितने दिन चाहो रुक कर जाओ, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। फिर अब तुम्हारी दीदी की तबीयत भी ठीक ही हो गई है, क्यों पूनम?
और शर्मिंदा तो ना करो।
तो अब तुम्हें तुम्हारी बहन, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कुछ हरे भरे नहीं, मेरा मतलब टेस्टी टेस्टी पकवान बनाकर खिलाएगी। मेरे हाथ की मोटी मोटी रोटी से तो तुम्हारा पेट और जी दोनों भर गया होगा, लेकिन मन नहीं भरा होगा।
जी बिल्कुल जीजा जी, मुझे आपके और दीदी यानी हमारे परिवार की तुलना 2 दिल और 1 धड़कन से करना बहुत अच्छा लगा।
इन्होंने सिर्फ तुलना ही की है, मैं अब दोनों को ऐसा बनाकर दिखलाऊंगी।
वाह दीदी, क्या बात कही आपने।
अपने पराए, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या आनी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।